दूसरा राजा अध्याय दो पद एक। जब यहोवा एलिया को बावंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया का इस पृथ्वी पर से जाने का समय आ गया। पिछली बार हमने इस दिलचस्प व्यक्ति के बारे में थोड़ा वर्णन किया था, जो फिर से आएगा और हो सकता है कि वो इस समय पृथ्वी पर कहीं जीवित हो, क्योंकि वो दो गवाहों में से एक होगा जो इसराइल में गवाही देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के अनुसार एलिया उन दो गवाहों में से एक गवाह होगा। हम क्योंकि उस समय के निकट है, इसलिए हो सकता है कि अब भी वो कहीं किसी स्थान में जीवित हो और कलीसिया के उठाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो, ताकि वो अपनी सेवा इसराइल में शुरू कर सके। समय आ गया था कि एलिया बावंडर के द्वारा स्वर्ग में उठाया जाए, इसलिए एलिशा उसका अनुसरण कर रहा है और वे गिलगाल को आए, जो यरूशलेम के पूर्व में है। ये यरूशलेम की पहाड़ियों में करीब 15 मील की दूरी पर है। अध्याय दो पद दो। एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। वे अब गिलगाल से बेतेल को जा रहे हैं। वे उत्तरी दिशा में यरीहो की ओर बढ़ रहे हैं। जब वे बेतेल पहुंचे, अध्याय दो पद तीन और चार, और बेतेल वासी भविष्यद् वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हां, मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। बेतेल से यरीहो के मध्य एक घुमावदार खाई है, इस कारण बेतेल से यरीहो की दूरी लगभग 18 मील है। अध्याय दो पद पांच से लेकर आठ तक। और यरीहो वासी भविष्यद् वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हां, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले, और भविष्यद् वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपने चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वो इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। भविष्यद् वक्ताओं के इन 50 चेलों के लिए ये एक अद्भुत अनुभव रहा होगा कि एलिया अपनी चादर को ऐंठ कर पानी पर मारता है, और पानी दो भाग हो गया कि वे दोनों सूखी भूमि पर चलकर पार पहुंच गए। अध्याय दो पद नौ से लेकर 15 तक। उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भावंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इसराइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वो लौट गया और यर्दन के तीर पर खड़ा हुआ और उसने एलिया की वो चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। हम यहां पर चादर और अभिषेक का एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य पर जाना देखते हैं। एलिया ने अपनी सेवा समाप्त की और आत्मा के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया गया। एलिशा ने आत्मा का दो गुना भाग मांगा कि वो भी पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा एलिया की सेवा को निरंतर बनाए रखे। वो एलिया की चादर लेकर वापस लौटा, उसे पानी पर मारा और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? आज मुझे आश्चर्य कर्म के बारे में आश्चर्य होता है, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? उन बड़े बड़े कार्यक्रमों और वातावरण जिसमें सेवक कहते हैं कि आश्चर्य कर्म होंगे, मुझे संतोष नहीं होता है। मैं वास्तव में विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर सर्कस के समान परिस्थितियों में कार्य करता है, परंतु वो बहुत साधारण प्राकृतिक तरह में कार्य करता है। महान भावुक परिस्थितियों में परमेश्वर महिमा नहीं पाता है, वहां तो महिमा कलाकारों को और कभी साथ सज्जा को मिलती है। वे आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और परमेश्वर पर ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। वे जानबूझकर आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि हम क्यों सच्चे आश्चर्य कर्म आज नहीं देखते। मुझे तो विश्वास है कि परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। इसलिए एलिया का परमेश्वर कहाँ है कहने से तात्पर्य है कि परमेश्वर जो प्रगट में कार्य करता है। ये एक स्पष्ट आश्चर्य कर्म है जहां कोई सवाल नहीं उठता ना शक होता है। मैं सहमत नहीं होता कि परमेश्वर ने प्रेरितों के युग या उससे पहले तक ही आश्चर्य कर्म किए। इतिहास में कहीं भी नहीं है कि अंतिम प्रेरित के बाद परमेश्वर ने कहा, ये अंतिम आश्चर्य कर्म था और अब से आगे कलीसिया अपने आप को संसारिक तौर पर मनुष्य की प्रतिभा के द्वारा शिक्षित करे और स्वयं को बढ़ाए। मैं तो ये नहीं मानता कि आश्चर्य कर्मों की कमी परमेश्वर की शक्ति में कमी या आश्चर्य कर्मों के प्रति परमेश्वर की अनिच्छा को दिखाती है। अंतिम बार जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या मुझे आश्चर्य कर्म करने का वरदान नहीं मिलेगा, तब उसने उत्तर दिया कि मैंने तुझे उस मार्ग पर चलाया है जो आश्चर्य कर्म से भी उत्तम है। उस समय के बाद मैंने कभी आश्चर्य कर्म करने का वरदान नहीं मांगा, परंतु मैं आनंदित रहा कि उसने हमारी संगति को सच्ची संगति बनाया है जिसमें एकता है, जहां यीशु मसीह शासन करता है। इससे मैं संतुष्ट हूं। मैंने पौलुस की तरह तीन बार प्रभु से कहा कि मुझे आश्चर्य कर्म करने का वरदान दिया जाए या मेरा जीवन आश्चर्य कर्म करने वाला जीवन हो, और परमेश्वर ने उसी तरह उत्तर दिया जैसे पौलुस को दिया था, इससे अधिक मत मांग, जितना दिया गया है उतने में संतुष्ट रहे। मैं भली भांति समझ सकता हूं कि यह वरदान संभालना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन है, और मैं इसे संभाल पाता इस बारे में मुझे शक ही रहता है, क्योंकि यदि किसी के पास आश्चर्य कर्म करने के लिए पवित्र आत्मा की सच्ची शक्ति हो तो वो और उसके जैसे भाई उस वरदान से कमाई करने की कोशिश करते हैं और अजूबा दिखाने वाले की तरह लेकर जगह जगह घूमते फिरते हैं कि आश्चर्य कर्म करके लोगों को प्रभावित करें, चंदा या दान इकट्ठा करें। इस प्रकार मनुष्य आप पर जो बोझ डाल रहे हैं उसे उठाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं प्रसन्न हूं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया कि मुझे आश्चर्य कर्म करने का वरदान प्राप्त हो, तो भी मुझे निश्चय है मसीह की देह में इसके लिए स्थान है, नहीं तो आत्मा ने आरंभ में ही यह वरदान नहीं दिया होता। हम जिस संशयी संसार में रहते हैं उसमें इसका मूल्य देख सकते हैं, और आश्चर्य करता हूं कि वो मनुष्य कैसा होना चाहिए जो इस वरदान से उत्पन्न सारी बुराइयों को संभाल सके। ये कठिन है, क्योंकि निश्चय ही आप जानते हैं कि ऐसे में प्रेस, दूरदर्शन आदि आपसे भेंट करना चाहेंगे और लोग आपको सम्मान देकर ऊपर उठाएंगे। ऐसा समय संभालना बड़ा कठिन होता है। सत्य तो यह है कि मैंने ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा कि इस वरदान को उचित रूप से व्यवहार में ले पाए। एलिया को परमेश्वर ने क्या कहा है? वो बदला नहीं है, वो अभी भी वैसे ही है, वो अभी भी मौजूद है, परंतु हमारे जीने के तरीके ने हमें उससे जुदा कर दिया है। हमें हमारा महान समाज, उन्नत समाज और संस्कृति चाहिए। इस समाज और संस्कृति में हमारा ध्यान भंग करने वाली कितनी चीजें हैं जो हमारे मन को परमेश्वर से दूर संसार की भौतिक चीजों की ओर ले जाती है। एलिया और एलिशा साथ साथ यात्रा करते हुए गिलगाल से बेतेल, यरीहो और यर्दन, उसके बाद फिर यर्दन पार गए। प्रकृति में चलना, जब आप स्वयं प्रकृति में चलते हैं तब एक चेतना और जागृति परमेश्वर की ओर से आती है जो सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाने से नहीं मिलती। बेतेल से यरीहो जाते समय परमेश्वर से संगति करने और मनन करने का अवसर था, परंतु यदि आप पतली और घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं और परमेश्वर से संगति और मनन करना चाहते हैं तो आप वास्तव में किसी ऊंची चट्टान पर अपने आप को पाएंगे। इसलिए आधुनिक समाज और सारी सुविधाएं वास्तव में आत्मिक उन्नति पर हानिकारक असर रखती है। इस तरह के वरदान के संभालने के लिए महान शक्ति की आवश्यकता होती है, और ये संकेत है कि एलिशा को प्रार्थना और विनती का उत्तर मिला, क्योंकि उसने विनती की कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। इसे स्पष्ट होता है कि ये वरदान उत्तराधिकार में प्राप्त किया जा सकता है, वो भी यर्दन को दो भाग करने का चमत्कार करता है जो उसके बुलाए जाने की पुष्टि करता है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत की। यहां ध्यान दीजिए कि समस्याएं कितनी जल्दी आ खड़ी होती है। मनुष्य उसके सामने झुक रहे हैं। इस समस्या से आप कैसे निपटोगे? ऐसा लगता है जब भी किसी मनुष्य को परमेश्वर की शक्ति या पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है तब लोग उसकी बड़ाई करने लगते हैं, वरन उसकी उपासना करने लगते हैं। ऐसी स्थिति पर काबू पाना बहुत कम सेवकों के वश में होता है। अध्याय 2 पद 16। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर वो किसी तराई में डाल दिया हो। नहीं, वो भावंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया हो सकता है। भावंडर उसको किसी और देश में ले गया हो, वे रेगिस्तान में कहीं घायल पड़ा हो, वो कहीं पहाड़ पर या घाटी में डाल दिया गया हो। अध्याय 2 पद 16 से लेकर 18 तक। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहां तक दबाया कि वो लज्जित हो गया, तब उसने कहा, चाहते हो तो भेज दो। सो उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 30 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाया। उस समय तक वो यरीहो में ठहरा रहा। सो जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? व्यर्थ का परिश्रम किया, क्योंकि पुरुष कुछ करना चाहते थे। उन्होंने उसी पर दबाव डाला और वो लज्जित हो गया और कहा, भेज दो, परंतु तुम नहीं जानते कि इसे कोई लाभ ना होगा। अध्याय 2 पद 19 से लेकर 22 तक। उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख, ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए, तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। ये मसीह के आने से करीब 1000 वर्ष पहले लिखा गया और उसके आने तक जो सोता यरीहो को पानी देता था वहां था और अच्छा था। इसके लिखे जाने के समय से आज तक वो पानी अच्छा है। मैं बहुत पहले वहां गया था और उस सोते का पानी पिया, उसका पानी आज भी अच्छा है। परमेश्वर ने सोते को मीठा करके यरीहो में एक अच्छा कार्य किया। वहां का पानी आज भी वास्तव में अच्छा है और उस जगह के लिए फल लाने वाला है। अध्याय 2 पद 23। वहां से वो बेतेल को चला और मार की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। इसका अनुवाद छोटे बच्चे किया गया है, इससे गलत धारणा बनती है। बच्चों का झुंड जो करीब 6 से 7 वर्ष के रहे होंगे पुकार रहे थे, हे चंदुए तू कहां जा रहा है चंदुए? परंतु इब्रानी भाषा में वास्तव में इन्हें 17-18 वर्ष का बताया गया है, ना कि छोटे बच्चे। ये लोग शरारती लड़के थे जो परमेश्वर के नबी का ठट्टा कर रहे थे। अध्याय 2 पद 24। तब उसने पीछे की ओर फिर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। ये समझना कठिन है कि उसने क्यों ऐसा किया, बस इसलिए कि परमेश्वर के जन का ठट्टा किया गया। अध्याय 2 पद 24 में आगे लिखा है, तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर, ये ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय वहां जंगल था, आज वो उजाड़ पड़ा है, वो एक घाटी है, वहां पहाड़ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अध्याय 2 पद 24 के अंत में लिखा है, उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। ये नहीं कहा गया है कि उन्हें मार डाला, परंतु फाड़ डाला। अध्याय 2 पद 25। वहां से वो कर्मेल को गया। स्पष्ट है कि वो हाइफा का समुद्र तट है। पद 25 में आगे लिखा है, और फिर वहां से शमरोन को लौट गया जो भूमध्य सागर से करीब 9 मील दूर है, परंतु हाइफा कर्मेल पर्वत से करीब 25 मील की दूरी पर है।